सारं सचिदानन्दरूपं लसत्कुन्दलं गोकुले भ्राजमानं
नमामि सारं सचिदानन्दरूपं
तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति प्रज्ञानकेशवैतिनां अतिमत्तचरित्राय स्वाश्रितानाञ्च पालिने जीवदुःखे सदार्ताय नाम प्रेम प्रदाय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हा देवी काको भरगदगदयाद्यवाचा जाचे निपत्त भूवि दंडवत उद्घटरति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विकेतो गणे गणनं विधे। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डं जागुटरोचिसाङ्ग विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कंद निवेशित जलभुजं ध्यायेन्दाम। भक्त्या विहीनाय परादलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरंगमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणा। गवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय मे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुते। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणं। यत किंकरीषु वहुषा खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शकण्डमौले यस्या पदा हे वृषभानुजाय ततकेलिकुञ्जभवनाङ्गनमर्जनि। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां स्थास्यां वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्।
आज शारदीय पूर्णिमा है। आज ही के दिन गोपियों का वेणु गीत सुना जाता है। स्वरत सच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना निवसत वायुना बातम स गो गोपाल को अच्युत। स्वरत स्वच्छ जलम, शरत काल आ गया, सर्वत्र स्वच्छ पानी हो गया। भादो महीने के बाढ़ आई थी यमुना में और सब सरोवरों में, कुसुम सरोवर, पावन सरोवर, मान सरोवर, मानस गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, विमल कुंड इत्यादि के पानी स्वच्छ एकदम हो गए, निर्मल। कमल के फूल उसमें खिल गए हैं। प्रकृति में नवजीवन का संचार हुआ। स्वरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंध। अब पद्माकर कमल के सुंदर सुंदर सुगंध से, भीनी भीनी मीठी मीठी सुगंध से भौरे उन्मत्त हो गए और उन्मत्त होकर के फूलों पर झंकार करने लग गए। कोयल इत्यादि पक्षियां भी मधुर मधुर स्वर से कुहू कुहू झंकार कर उठी। पद्माकर सुगंधिना न्यवसत वायुना बातम सह गो गोपाल को अच्युत। न्यवसत वायुना, वायु ने उस सुगंध को मधुर जो झंकार कर रहे थे उसको वायु बहन करती है और सारे वृंदावन में, सारे ब्रजमंडल में उसको व्याप्त कर दिया। जिनके जिनके नाशिका में ये सुघ्राण गया सभी लोग मदमत्त हो गए। घर में गोपियां बैठी हुई थी, ये हवा सुगंध के साथ साथ में कृष्ण की बंसी की तान को भी गोपियों के घर घर में पहुंचाया। ये हम लोग जो शब्द बोलते हैं इसको बहन करके दूसरी जगह कानों में ले जाता है कौन? बाबा वायु। न्यवसत वायु ना बातम सह गो गोपाल को अच्युत। और कृष्णचंद्र जी समस्त गायों को लेकर के, सखाओं को लेकर के, बलदेव को लेकर के वृंदावन में गोचारण करने के लिए चले। कुसुमित वनराज सुष्म भृंग द्विजकुल घृष्ट शरण मही ध्रम मधुपत अवगाह्य चारयन गा पशुपाल बलस चुकुज। इसी शरद ऋषि का ही वर्णन है। कुसुमित वनराज, हवा ने सुगंध को लेकर के चारों तरफ में फैला दिया, चारों तरफ में वृंदावन, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन उस सुगंध से एकदम भरपूर उठे। कुसुमित वनराज सुष्मित भृंग, सुष्मित माने होता है पागल हो जाना, उन्मत्त हो जाना, भौरे पागल हो गए। वे कमल की, कमल के फूल से अब निकल रहे हैं, अब सूर्योदित हो गया और चारों तरफ में झंकार। यही हवा, सुगंधित हवा कोकिल के नाशिका में पहुंची, वो जग उठी, कुहू कुहू कर उठी। मयूर नो नाचने लगे उस हवा से और कृष्ण इत्यादि क्या किए? कुसुमित वनराजी सुष्मित भृंग द्विजकुल घुष्ट शरण शरण महिद्रम। और पक्षी जितने थे सुपपीहा और सम्मो सब एकदम कलरव कर रहे। वृंदावन अत्यंत रमणीय हो उठा। और उस समय में कृष्ण ने क्या किया? कुसुमित वनराज सुष्म भृंग द्विजकुल घुष्ट शरण शरण महिद्रम। महिद्रम जितने पर्वत थे और नदियां सरोवर सब एकदम सुंदर से सुंदर हो गई। महिद्रम मधुपति अवगाह्य चारण चारण का, वृंदावन में अवगाह्य मैंने भीतर घुस गए और वो भी बंसी की तान उन्होंने छोड़ दी। बलदेव, सिदाम, सुदाम, पशुदाम, स्तोक, लौंग, कृष्ण, अर्जुन ये जितने उज्ज्वल सब को लेकर के एक बन से दूसरे बन में प्रवेश। अब इसके बाद में आसुप्त वेणु गीतम स्मरोदयम, गोपियों को स्मर हो गया, सुना उन्होंने बंसी की तान कृष्ण को। और परोक्षम कृष्णस्य, कृष्ण के परोक्ष में कृष्ण गोचारण करेंगे ये घर में बैठ करके और गान करेंगे, किंतु गान नहीं कर सकें और रुक गई। क्यों? विक्षिप्त चित्त, विक्षिप्त हो गया। क्यों? कृष्ण के स्मरण से स्मर जागृत हुआ और उससे एकदम विक्षिप्त होकर गया। अब वो कहने लगी, अब यहीं पर नटवर क्या बराहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्राण वेणुरदर सुधया पूरयन गोप बिंदई बिंदारण्यम शपदरमणम प्राविशत गीर्तकी। पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज, इसी महीने में इसी दिन गोपियां उनका सब स्मरण कर रही हैं। इसी समय में इसी महीने के अंदर में यशोदा जी ने कृष्ण को बांधा, दधित्यादि चोरी करते थे, और इसी महीने में अभी आएगा वो दिवाली और इसके बाद में अन्नकूट प्रतिपदा के दिन में यशोदा जी ने अपने प्रेम से उन्हें बांध दिया। इसी महीने में शरद पूर्णिमा में यह रास हुआ और वो कितना चला, ब्रह्मरात्रि तक चली। ब्रह्मरात्रि में कितने ये शरद पूर्णिमा आई होंगी, 1000 से कितनी ही शरद पूर्णिमा इसमें आई सब। इसी में गोपियां कृष्ण अंतर ध्यान हुए और गोपियों का जयतिथिधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शस्वदत्त ही इत्यादि ये सब गोपियों का ये गोपी गीत हुआ। इसी महीने में गोपियों ने कृष्ण को बांध दिया राधा जी के साथ में, तब वो राधा दामोदर हुए। इसी महीने में गोपाष्टमी हुई। सबसे पहले कृष्ण और बलदेव गोचारण वत्सचारण करने के लिए योग्य बने। वत्सचारण के योग्य बने और यशोदा मैया ने उनको सजा दिया और इसी महीने में वत्सचारण करने के लिए निकले। और इसी महीने में गोचारण किया, गोपाष्टमी इसी महीने में हुई। कृष्ण जिन बछड़ों को चराते थे, बछड़ियों को चराते थे, वो बड़ी हो गई और वो उनके अब बच्चे हो गए। अब वो पहले का अभ्यास है कृष्ण के साथ में जाने का, इसलिए अब चरवाहों के साथ में नहीं जाती हैं, इसलिए कृष्ण को बाध्य होकर के अब गोचारण करना पड़ा। गायों को लेकर के अब चारण करने लगे। इसी महीने में कंस को मारा, आए नंदगांव से और इसी महीने में उनको मारा, कंस को मारा था इसी महीने में। इसी तरह से जितनी भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध लीलाएं हैं, गोवर्धन धारण भी इसी महीने में हुआ। इसी महीने में अन्नकूट हुआ, प्रसिद्ध अन्नकूट इसी महीने में। इस महीने में दिवाली भी होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि यह महीना ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी अधिष्ठात्री श्रीमती राधिका जी हैं। कृष्ण का है पुरुषोत्तम महीना और श्रीमती राधिका जी का है ये कार्तिक महीना, ऊर्जेश्वरी, सबकी ऊर्जा देने वाली ये स्वयं राधिका जी हैं, कृष्ण को भी ऊर्जा देती हैं। जत्र विनिमयो त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कोकुम सत्यम परम धीमहि। क्या है?
तेजो
बार मृदंग जत्र यथा विनिमयो जत्र सृष्टि सर्गो अमृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कोकुम सत्यम परम धीमहि। तेजो बार मृदंग, तेजो तेज, तेज माने शक्ति, शक्ति का यहाँ पर ध्यान किया गया। ये शक्ति श्रीमती राधिका जी हैं तेज, इसीलिए भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो तेज, वही तेज यहाँ पर भर्गो देवस्य धीमहि, उनका हम ध्यान करते हैं। राधा जी का ध्यान करने से ही उसमें कृष्ण आ जाएंगे। कृष्ण का ध्यान करने से नहीं भी आ सकती हैं राधा जी, कोई जरूरी नहीं, किंतु राधा जी का ध्यान करने से कृष्ण अपने आप उसमें चले आते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत श्रीमती राधिका जी का ही गुणगान है। इस ऐसे शुभ महीने में शरद पूर्णिमा के दिन शाम को जिसमें कृष्ण ने बंसी बजाई ना, क्या है वो शरद उत्फुल्ल मल्लिका रंतुम
भगवान
अपि तारात्रि रंतुम मनश्चक्रे जोग माया समाप्ति। इसमें कृष्ण ने बंसी बजाई, शाम को चंद्र अभी उदित हो रहे हैं, अपनी लाल लाल किरणों से पूर्व दिशा को मल रहे हैं, लाल एकदम कर रहे हैं। ठीक उसी समय में हम लोग के भी गुरुपाद पद्म राधिका जी के दासी के रूप में उनकी नित्य लीला में प्रवेश हो गई। कल हमने इसके संबंध में कुछ बतलाया था, इसलिए हम लोग सबसे पहले उस गुरुपाद पद्म के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करके हम ये महीना, हम कार्तिक महीना आरंभ करते हैं। उन्होंने दामोदर महीने के उद्यापन करने के लिए, आरंभ करने के लिए कुछ दो एक बातें इसमें उन्होंने निवेदन किया है, हम उसका पाठ करें। किंतु हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के समय में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के ठाकुर जी के समय में, गुरु जी 16 वर्ष की आयु में वहाँ पर आए, कॉलेज इत्यादि छोड़कर बड़े तेजस्वी, बड़े सुंदर सुकुमार थे। स्कूल में उसी समय में प्रभुपाद जी से आकर के कुछ सुनने के बाद में कॉलेजों में प्रोफेसरों और उसके प्रिंसिपलों से उनका तर्क वितर्क हो जाया करता। उस समय पाठ्य पुस्तक थी एमए में चैतन्य चरितामृत, पाठ्य पुस्तक थी बंगाल में चैतन्य चरितामृत, है भी वैसे ही पुस्तक हुआ। तो उसमें एमए में जो पढ़ाते थे वो लोग इनके पास में आते थे सुनने के लिए, विशेष करके बदंती तत्वविद तत्त्वम श्रीमद् भागवत का है और पुष्पांजलि चैतन्य चैतन्यमृत में इन सब लोगों का श्लोकों का उद्धार किया है। उसमें जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश। या अनर्पित चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, श्लोक इत्यादि हैं। उन लोगों के समझ में कुछ नहीं आता, इनसे पूछते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब कॉलेज में हम पढ़ करके क्या करेंगे बेकारी से, ये हमको तो कुछ पढ़ाएंगे नहीं। इसलिए प्रभुपाद के चरणों में चले गए 16 वर्ष की स्थिति में। उसमें उनका हरिनाम हुआ, दीक्षा हुआ, और 2-3 वर्ष के बाद में फिर वो एकदम सब छोड़ करके चले आए गुरुजी के पास में। कैसी निष्ठा था आप लोग को, तो कितनी बार बतलाया है। इनकी माँ की अंतिम स्थिति थी और प्रभुपाद जी ने कहा जो तुम्हारी माँ का पत्र है, तुम घर एक बार जाओ घूमाओ, तो ये कुछ बोले नहीं, अजय जाओ। मैया ने लिखा था जैसे एक बार तुम्हारा मैं दर्शन करना चाहती हूँ, मेरी अंतिम स्थिति है। प्रभुपाद जी कहने पर किसी घर में घुस गए और रात भर नहीं निकले। दूसरे दिन सवेरा हुआ, विनोद चला गया, तो लोगों ने कहा हमने देखा नहीं। अच्छा देखो तो जो गया कि नहीं, तो देखा जी घर के कोने में बैठे हैं। प्रभुपाद जी ने बुलाया, गए, कहे तुम घर नहीं गया मैया के पास में, हमारी मैया मर रही है। प्रभु जी मैया के पास तो मैं बहुत दिनों तक था, कोटि कोटि जन्मों के बाद में हमको ये सुयोग मिला आपके चरणों में, और वहाँ जाएंगे अंतिम समय में मैया कहेगी बेटा अब तो घर में कोई है नहीं, तुम ही देखने सुनने लायक है, तुम घर की व्यवस्था करो, तो उसकी अंतिम इच्छा को आज्ञा को मैं कैसे मना कर दूंगा, तो मुझे घर में रहना पड़ जाएगा। इसलिए जो पाप लगे लगे, किंतु मैं आपके चरणों को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। फिर प्रभुपाद मिले उनको कुछ नहीं कम भीतर में देखा, सचमुच में ये दृढ़ कि जवाला गुरु निष्ठा संपन्न ये व्यक्ति है। हम लोग को भी ऐसे ही होना चाहिए। प्रभुपाद जी और किसी को तुम ही नहीं करते थे, बस इनको और एक परमानंद प्रभु, बस दो, और सबको कहते थे आप कुशल से हैं, आप ठीक हैं। प्रणाम करने पर बस वो भी प्रणाम कर लेते, अथवा कृष्णे मति रस्तु, चिट्ठी में यही सब लिखते थे। आपको छोड़ करके तुम लोगों को ये तुम नहीं करते थे, किसी को आदेश भी नहीं देते थे, ये आदेश करते हैं यह किया जाए, ऐसा हो तो अच्छा है, बस इतना ही। क्योंकि जानते थे जब बद्ध जीव है यदि आदेश नहीं माना तो इसका अमंगल होगा, इसलिए वो आदेश भी नहीं देते थे। गुरु जी का भी प्राय ऐसा ही था, बहुत कम बोलते चलते थे, किंतु हरि कथा में मुखर हो जाते थे। इन्होंने प्रभुपाद के समय में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो प्रभुपाद के लिए मनोभीष्ट थे। साधु संन्यासियों को वैराग्य पूर्वक रहना चाहिए, किंतु अपने प्रभुपाद की के मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए अच्छे वस्त्र में सुसज्जित रूप में रहते, घोड़े पर, अच्छा घोड़ा फर्स्ट क्लास, उस पर चढ़ते और सब लोगों को ठीक रखते थे। प्रभुपाद के पहले, इनके आने के पहले सब लोग मठवासियों को बहुत नीच नज़र से देखते थे, उनको कोई सम्मान नहीं देता था, ये घर बार छोड़ करके बेकार, जैसे यहाँ पर बाबा जी लोगों को कोई महत्व नहीं देता, भीख मांगते हैं एक एक पैसा दिन भर भीख मांगते हैं, और नजर भीख मांग करके घर में भेजते हैं ना क्या करते हैं, ऐसे हैं बहुत से लोग। इसलिए उनको हीन नजर से देखते, चरित्र भी ठीक नहीं था उस समय लोगों का। किंतु प्रभुपाद जी के आने के बाद में, अब विशेष करके इनके मठ में आने के बाद से सब लोग सम्मान करने लगे। ब्रह्मचारी लोगों को इस सेवा करने के लिए भेजते तो कहते, देखो तो ये जितने पढ़े लिखे एमए बीए सब लड़के आए हैं, इनको सरस्वती ठाकुर जी ने, सरस्वती ने बेवकूफ बना करके गधा बना रखा है। पैखाने का उन्नाद होता है या किसी काम के लिए, देखो तो ये सब पढ़े लिखे लड़के कहाँ अफसर होते, काम करते, और इनको इस काम में लगा रखा है। गुरु महाराज जी तरकारी का बोरा लेकर के चल रहे हैं और सब लोग दिन रात एक एक पैसा भिक्षा करके उसमें लाते प्रभुपाद के काम। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सब लोग यही नहीं भारतवर्ष में सर्वत्र एक एक पैसे की भिक्षा से सर्वत्र उन्होंने पढ़ा। गुरु महाराज जी जैसे लोग एक एक पैसा भिक्षा लेकर के प्रभुपाद का, और उसमें बक्सा में ताला लगा दिया जाता है जैसे वो पैसा न ले। आज जैसा नियम नहीं, चार आना छ आना चार आना और एक आठ आना बारह आना चार आना का हिसाब नहीं था। वैसे गुरु भी थे वैसे शिष्य भी थे, ताला लगा देते। बस गुरु महाराज जी के लिए ताला और चाबी दोनों प्रभुपाद ने दिया था, तुम खोल करके फिर हमको दे देना, और सबके लिए ताला लगा करके रख। इंद्रियों पर संयम नहीं है ना, इसलिए दोपहर में कड़कड़ाती धूप में भिक्षा करके ले आते थे सब, सुदामा विप्र और कृष्ण की भांति। तब वो लोग ऐसे हुए थे, जहां जहां पर कोई विपत्ति की बात आई गुरु महाराज जी को सबसे पहले बुलाते। जमींदारी थी मायापुर में, कंट्रोल करने के लिए उनको बुलाया। उस समय इनकी उम्र कोई 20 वर्ष की होगी। समस्त मुसलमानों को बड़े बड़े थे, बलवान भी धनवान भी, सब विषय में मालगुजारी नहीं देते थे। उस समय मालगुजारी चार आना प्रति बीघा, दो आना एक आना नहीं देते थे कोई। और उनको बुला करके कटहल में बंधवा करके दो कोड़ा लगाया और सब लोग अपने आप दे गए। यह काम सब मालूम होता है जो संसारी कर्मी जैसा, किंतु सचमुच में ये कर्मी जैसा काम नहीं है। हम लोगों ने जब वो मठ छोड़ करके विवश होकर के जब चले आए, तब हम लोग देवा वहाँ पर गौड़ीय विधान समिति स्थापन की 1941 में, प्रभुपाद गए 1937 में, 36 के अंत में दिसंबर और जनवरी के एक दिन में, इधर दिसंबर शेष इधर जनवरी आरंभ वो गए। इसके बाद में पुथल पुथल हो गया, सारा प्रचार ठप एकदम बंद हो गया। गुरु महाराज जी वहाँ से आए, गौड़ीय वेदांत की स्थापना कलकत्ते में की, बोसपाड़ा लेन में। पूज्यपाद बामन महाराज जी उस समय गुरु जी का रसोई बनाना या स्वयं सेवा करते थे, हम लोग उस समय नहीं आए थे 1941 में। और वैष्णव का रसोई तना, यहाँ तक कि बीमार हैं बामन महाराज जी, 103 बुखार चढ़ा, तभी गुरु जी उनको डांट दिया, बुखार पीछे आएगा, अभी जाओ रसोई बनाओ, बस चले गए रसोई। गुरु महाराज जी परम भक्त वत्सल थे, विपक्ष के लिए तो वो एकदम सिंह जैसे थे। विपक्ष माने क्या, भक्त धर्म के विरोधी जो है, और सपक्ष वालों के लिए जैसे सिंह का बच्चा अपनी माँ को प्यारा होता है, ऐसे थे एकदम माँ के समान थे, सिंह के समान। तो हम लोग इसके बाद में आए हैं, तब उनको देखा, जिस समय हम लोग आए थे बहुत गंभीर थे। एक बार नवद्वीप परिक्रमा में बैठे थे तो उनका एक गुरु भाई बहुत पढ़े लिखे बहुत विद्वान आदमी थे, सन्यासी थे, वो आए तो हमने देखा जी गुरु महाराज के गुरु भाई हैं, बस दौड़ करके बिना किसी आदेश के ही मैं चेयर लेकर के गुरु जी के सामने चेयर पर बैठे थे अकेले, एक चेयर लेकर के दे दी। तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया गुरु जी को और मट्टी में ही बैठे। जब वो चले गए तो वो बोले जैसे मैंने कहा था कि तुम चेयर ले आना, चेयर क्यों ले आया, ये हमारे जन्म दिए हुए ये सब लोग हैं, उनको वहां पर सम्मान करना माने हमको अपमान करना न हो जाए, इसलिए देख सुन करके सब काम करना चाहिए, विचार कर लिए चित्ते विचार करना चाहिए। यद्यपि वो लोग गुरु भाई हैं किंतु उनको गुरु जैसा सभी लोग सम्मान करते थे, बड़े बड़े लोग सब लोग इनको विनोद दा कहते थे। गुरु जी के अप्रकट होने के बाद में इन्होंने ही सबसे पहले मासिक पत्रिका आरम्भ की। ये हम लोगों मेरे आने की जिस वर्ष में आया था उसी वर्ष में हमारी गौड़ीय पत्रिका चालू हुई और उन्होंने अनुग्रह करके हमको भी एक संपादक मंडली में हमारा नाम भी दे दिया। अभी आया था तो नया पूज्यपाद बामन महाराज जी ये थे प्रकाशक थे, तो बेकम महाराज प्रचार संपादक और संपादक नहीं, हमारा भी संपादक नहीं, और दूसरे लोग थे मोहिनी मोहन इत्यादि सब। पत्रिका आरंभ हुई और सब पत्रिकाएं सब बंद थी। नवद्वीप धाम परिक्रमा एकदम बंद थी, उन्होंने फिर से उसको चालू किया कार्तिक महीने में, उन्होंने आरंभ किया कार्तिक महीने में 200 400 500 हजार आदमियों को लेकर के एक एक तीर्थों में जाते थे एक महीने के लिए। जिस समय हम आए थे उस समय में उसके पहले वर्ष में हुई थी पूरी ब्रजमंडल गोल क्षेत्र मंडल सब क्षेत्र मंडल की परिक्रमा, जिसमें आया उस समय में हुई द्वारका परिक्रमा, उसके पहले अयोध्या काशी नैमिषारण्य इत्यादि में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ, उनके साथ में कुछ वर्षों में मैं भारतवर्ष में सर्वत्र जितने तीर्थ हैं सब तीर्थों में मैं गया, विशेष करके दो दो बार गया गुरु महाराज जी के साथ में, एक बार देखने के लिए सब अनुसंधान करना और दूसरी बार फिर उनके साथ में। गुरु सेवा से यही सब होता है। इस तरह से प्रचार आरंभ हुआ। नवद्वीप में विशाल रूप से हमारे आने के बाद में तब ये नौ शिखर वाला नौखंड में ये स्थापन हुआ, मथुरा में हुआ। केवल हम लोगों का एक उदाहरण गौड़ीय मठ था वहाँ चुचुड़ा, वहीं पर प्रेस था, छोटा सा स्थान, पीछे से नवद्वीप इत्यादि हुआ। प्रभुपाद की महिमा इन्होंने प्रचुर रूप में प्रचारित की, मायापुर को इस तरह से उन्होंने प्रभुपाद की आकांक्षाएं पूर्ण की। केवल इसी तरह से नहीं बल्कि निम्बार्क संप्रदाय सहजिया संप्रदाय सावड़ी का जो प्रभुपाद के विरुद्ध में लिखा था, ये गौड़ीय मठ वाले रस विचार कुछ नहीं जानते, बोले को आम की गुठली चूसते हैं और हम लोग रस चूसते हैं। कुछ पीछे से ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे हम लोग रूप गोस्वामी के ग्रंथ इत्यादि को भूलने लगे, पढ़ते नहीं कोई। चैतन्य चेतामित का पठन पाठन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। पीछे से सोचा, उन लोगों का उद्देश्य ये था, अत्यंत गोपनीय चीज है ये रासलीला इत्यादि, कृष्ण की लीलाएं, किंतु फिर भी रागानुगा भक्ति का प्रचार करने के लिए ही और चीज को देने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु आए। खूब सावधानी के साथ में इन चीजों के तरफ में बढ़ना चाहिए। उनका उद्देश्य यह था, किंतु चैतन्य चैतामृत रूप गोस्वामी के ग्रंथ, रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ क्यों उन्होंने लिखा, लिखा क्यों, भागवती क्यों लिखा गया, गोपनीयता एकदम गोपनीय ही रख दिया जाए, ये उद्देश्य था? ये तो उद्देश्य नहीं हो सकता। जो कि लोग, अधिकारी लोग इसको देखेंगे, ऐसा भजन करेंगे, एकदम बंद ही हो जाए, अध्याय चैप्टर ही बंद हो जाए, ये उद्देश्य नहीं था। हमारे जितने भी आचार्य आए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, सब ये लोग रागानुगा भक्ति का प्रचार और आचरण किया उन लोगों ने, वैदिक भक्ति के माध्यम से वैदिक भक्ति भी रहेगी साथ साथ में। जो कि व्यक्ति बैठ जाओ, बैठो, वैदिक भक्ति का भी करेंगे और साथ साथ में रागानुगा भक्ति के तरफ में लोग प्रवेश करेंगे, यही उनका उद्देश्य था। इसलिए कोई भी हमारा भजन रहस्य देखो, भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्या है, उपदेशामृत क्या है, मन शिक्षा क्या है, चैतन्य शिक्षाष्टक क्या है, शिक्षाष्टक में कुछ भी बाकी नहीं रहा। आश्लीष व पादरतम इत्यादि श्लोक स्पष्ट रूप से इसी के बोधक है। बृहद भगवतामृत ग्रंथ में क्या लिखा है, इन ग्रंथों को जो कोई पढ़ेगा इधर में रुचि आएगी, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए अनाधिकारी लोग इधर ना आए, यही मूल उद्देश्य था। किंतु कोई व्यक्ति अधिकारी ही नहीं हो और कोई इस धर्म में नहीं आए, उनका यह तात्पर्य नहीं था। आज हम लोग गुरु जी कह रहे हैं दामोदर व्रत सबको करना चाहिए, अत्यंत अनंत शक्तिमान भगवान कृष्णचंद्र की मैया ने इसी महीने में उनको बांधा था कृष्ण को, और वह बंधे हो करके भी खुद तो बंधे रहे और जमलाजुन का बंधन काट दिया। केवल बंधन ही नहीं काटा, हमको उसमें आग्रह नहीं है, ये दामोदर अष्टक के बनाने वाले कहते नमोक्षे ग्रहों में अस्ति
दामोदरे
दामोदरे, हमको उसमें आग्रह नहीं है, हमको आग्रह है प्रेमा भक्ति हमको
दीजिए,
तथा प्रेम भक्ति
सकांग
में प्रयच्छ न तत् में
मोक्ष ग्रह में अस्ति दामोदरे,
उसमें आग्रह नहीं, मुक्ति हो या न हो इसमें आग्रह नहीं। वी डोंट वांट लिबरेशन एट ऑल, whether there will be liberation or not, prema bhakti should be have, we should have prema bhakti, krishna should mercifully give this prema bhakti to us, and what prema bhakti is also so many kinds, bahut tarah ki prema bhakti hai, prema bhakti karne se ek koi gold pind nahi hai, isme bahut se bhed hain, उन भेदों में से कौन सी प्रेमा भक्ति, यह साधक के ऊपर निर्भर करता है साधु संघ के प्रभाव से। तो इनका ऐसा मालूम पड़ता है भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि सत्यव्रत मुनि नमामि ईश्वरम से आरंभ किया, ईश्वर से कृष्ण को ईश्वर मान करके और अंत में नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो नंत लीलाय
देवाय
इसे मात्र। किंतु है नमस्कार है उसमें, उसमें भी है। अभी उस लीला को श्रीमती राधिका को और उनके परिकरों को नमस्कार कर रहे हैं, उधर को भी रसी को भी नमस्कार कर रहे हैं। उनके प्रति ऐश्वर्य भाव है राधिका जी के साथ भी रहने से भी। जब खूब अच्छी तरह से विचार करके हम देखेंगे तो ऐसी भक्ति से क्या होगा,
गोलोक
में जहां पर नमस्कार इत्यादि नहीं है। यशोदा जी कृष्ण को नमस्कार करेंगी या उनको बांधेगी तो उनके अनुगत रहने वाला रागानुगा का जो साधन करेगा वो क्या करेगा, कृष्ण को वैसे नमस्कार करेगा तो तैयार उनका अनुगमन नहीं हुआ। ऐसे गोपियों का अनुगमन जो करता है उनके लिए भी वैसे नमस्कार इत्यादि नहीं, बल्कि वहां पर हृदय से ही सब कुछ कार्य होता है। तो इस महीने में प्रतिदिन विशुद्ध चित्त से दामोदर अष्टक का भी पाठ किया जाए नियमित रूप में उठ करके। कल से अब देखना वो 4:30 बजे जरूर आरती हो जाने, तो इधर में विलंब हो जाए बहुत सा काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आरती हो, सभी लोग आरती में दर्शन करेंगे, नहीं अपने अपने घर में आरती कर करके तब फिर